पद 40 का गुप्त इतिहास संख्या 8 पर्वत।
पतरस के लिए रूपांतरण का पर्वत पानियम और क्रूस के बीच घटित हुआ और दूसरी रेखा पर पतरस मसीह की सेवकाई के आरंभ में, उसके बपतिस्मे और उसकी सेवकाई के अंत में विजयी प्रवेश के ठीक पश्चात के बीच स्थित है। बपतिस्मा, पर्वत और विजयी प्रवेश के निष्कर्ष, ये तीन मार्ग चिह्न उन तीन अवसरों द्वारा चिह्नित हैं जब स्वर्गीय पिता ने वचन कहा। यूहन्ना 12 में तीसरा अवसर वो है जब यूनानी यीशु को खोज रहे थे। बपतिस्मा 9 गाउरम है, पर्वत पानियम के इतिहास में है, जो पद 16 के रविवार व्यवस्था तक पहुंचता है। पतरस के लिए यह पानियम था, फिर पर्वत और उसके बाद विजयी प्रवेश के निष्कर्ष तक, जो उस समय से ठीक पहले था जब मसीह दूसरी बार महिमान्वित होने वाला था।
अब मेरा प्राण व्याकुल है और मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी तक पहुंचा हूं। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब स्वर्ग से ये वाणी आई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग वहां खड़े थे और उसे सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, दूसरों ने कहा किसी स्वर्गदूत ने उससे बात की। यीशु ने उत्तर देकर कहा, ये वाणी मेरे लिए नहीं आई परंतु तुम्हारे लिए। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का हाकिम निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊं तो सब मनुष्यों को अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर संकेत दिया कि वो कैसी मृत्यु मरेगा। यूहन्ना 12:27-33।
लैव्य व्यवस्था 23 आपिंते कुस्ती ऋतु द्वारा रूपांकित की गई रेखा में आरंभ का एक मार्ग चिन्ह है, जिसमें तीन चरण हैं और उनके पश्चात 5 दिन हैं, और अंत में भी एक मार्ग चिन्ह है जिसकी विशेषताएं बिल्कुल वही हैं। उन मार्ग चिन्हों के बीच 30 दिन याजकों की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तुरहियों के पर्व पर समाप्त होती है। तुरहियों का पर्व मसीह का अपने पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिन तक अपने चेलों को आमने सामने शिक्षा देने के बाद स्वर्गारोहण और प्रायश्चित का दिन, ये लैव्य व्यवस्था 23 की रेखा के अंत के तीन चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन तीन चरणों के पश्चात पिंतेकुस्त और डेरों के पर्व दोनों तक 5 दिन हैं। तीसरी बार स्वर्गीय पिता ने तभी वचन कहा जब यूनानी, जो संडे लॉ के समय बाबुल से बुलाए गए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यीशु से भेंट करने की इच्छा कर रहे थे। संडे लॉ से ठीक पहले यीशु क्रूस पर धूज के उठाए जाने की पहचान कराते हैं। 9:11 पर पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हुई थी और संडे लॉ पर वो फिर आलोकित होती है। कैसरिया फिलिपी, जो पानियम है, 3रा घंटा है, और कैसरिया मारितिमा क्रूस का 9वां घंटा है, जब बाबेल से बाहर निकल आने का बुलावा दिया जाता है। क्रूस से पहले पानियम के भविष्यवाणीगत इतिहास में पतरस पर्वत पर है, परंतु अब भी विजयपूर्ण प्रवेश के समापन से पहले पानियम पद 16 के क्रूस तक बना रहता है। पानियम में पतरस लैव्य व्यवस्था 23 के तुरहियों के पर्व, आरोहण और प्रायश्चित के तीन चरणीय इतिहास से ठीक पहले है। पतरस याजक की विशेष शिक्षा के 30 दिनों में है।
सिमोन पानियम में पतरस बनता है और विजयोत्सवी प्रवेश से पहले पर्वत पर उसका एक चरण है। विजयोत्सवी प्रवेश 10 कुमारियों के दृष्टांत को प्रतिपादित करता है, केवल 5 विवाह में प्रवेश करती है, और त्रिगुणित मार्ग चिन्ह तथा पिंतेकुस्त के बीच के 5 दिन विजयोत्सवी प्रवेश का आरंभ है। इसका आरंभ तुरहियों के पर्व से होता है, परंतु वो मार्ग चिन्ह 3 मार्ग चिन्हों के संयोजन से बना है। एक एकल मार्ग चिन्ह के रूप में वे तुरहियों के पर्व के साथ नैशविल पर आक्रमण की पहचान करते हैं। मध्यरात्रि की पुकार का संदेश अभी अभी पुष्टि किया जा चुका होगा, और 5 बुद्धिमान कुमारियों का जुलूस उस प्रक्रिया का आरंभ करता है जो क्रूस की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान तक ले जाती है, जो रविवार व्यवस्था है।
पतरस पानियम में है जब वो नैशविल के अग्निगोलों की भविष्यवाणी को ठीक करता है, और भविष्यवाणी की पूर्ति पर तुरहियों के पर्व के फूंके जाने से पहले भविष्यदर्शी अनिवार्यता के अनुसार उसे पहले पर्वत पर जाना ही होगा, क्योंकि विजयी प्रवेश से पहले पर्वत था। अब्राहम के पर्वत पर जाने से पहले उसका नाम बदल दिया गया था, और पतरस का नाम पानियम में बदल दिया गया उससे पहले कि वो पर्वत पर जाए। नैशविल के अग्निगोलों की भविष्यवाणी की पूर्ति से पहले पर्वत पतरस की परीक्षा है। ये पूर्ति तीसरी और कसौटी सिद्ध करने वाली परीक्षा है, जहां चरित्र या तो आनंद के रूप में प्रकट होता है या लज्जा के रूप में।
457 ईसा पूर्व की रेखा राफिया और फेनियम के बीच समाप्त होती है। उत्पत्ति अध्याय सेफर की वाचा राफिया के साथ संरेखित होती है और मत्तियाह अध्याय 16 की वाचा फेनियम के साथ संरेखित होती है। फेनियम से पतरस पर्वत पर जाता है, जैसे अब्राहम इसहाक के बलिदान के लिए गया था। पतरस की रेखा का पर्वत अब्राहम के समय के पर्वत साथ संरेखित होती है।
अब्राहम का मार्ग गची से 3 दिनों का था। विजयोत्सवी प्रवेश के समय मसीह को ले चलने के लिए एक गधी लाने हेतु 2 चेलों को भेजा गया था और अब्राहम की रेखा में उसकी 3 दिवसीय यात्रा इसहाक की बलि के लिए लकड़ी उठाने वाली एक गधी और 2 दासों के चयन से आरंभ होती है। पर्वत तक पतरस की 8 दिवसीय या 6 दिवसीय यात्रा अब्राहम के लिए 3 दिनों की थी। पानियुम में पतरस पर्वत से पहले है और गधी को खोलकर यरूशलेम में प्रवेश आरंभ होने से भी पहले है, वही स्थान जहां अब्राहम के 3 दिन आरंभ हुए। विजयोत्सवी प्रवेश में मसीह जैतून के पर्वत पर ठहरा और यरूशलेम के लिए रोया। इस प्रकार परमेश्वर और प्राचीन शाब्दिक इसराइल के बीच वाचा संबंध के निष्कर्ष को चिह्नित किया। पतरस का पर्वत विजयोत्सवी प्रवेश से पहले है, मसीह का पर्वत विजयोत्सवी प्रवेश के दौरान है और अब्राहम का पर्वत प्रवेश के निष्कर्ष पर है।
2026 मध्यावधि चुनावों का वर्ष है, जब बाइबिलीय भविष्यवाणी के 6ठे राज्य का 250वां वर्ष अपने महिमामय शासन का उत्सव मनाता है। भविष्यदर्शी मध्य बिंदु के रूप में वो उत्सव 222 ईसा पूर्व में अंतियुखुस महान के साथ मेल खाता है, जो राफिया और पानियम के बीच का मध्य बिंदु है, और 1054 ईसा पूर्व से आरंभ होने वाले उन 250 वर्षों के अंत को चिह्नित करता है। अब तक जो 4 रेखाएं अध्याय 11 से लेकर अध्याय 22 तक सम्मिलित करती हुई अनमुद्रित की गई हैं, उन पर विचार करते हुए संभव है कि अन्य उदाहरण भी हों। अब हम द डिजायर ऑफ एजेस में उन अध्यायों को ग्रहण करते हैं। अध्याय 11 है बपतिस्मा और अध्याय 22 है यूहन्ना का कारावास और मृत्यु। यूहन्ना आरंभ में भी है और अंत में भी, और अध्याय 17 जो मध्य का अध्याय है नीकुदेमुस है।
नीकुदेमुस प्रभु के पास ये सोचकर आया था कि वो उनके साथ किसी चर्चा में प्रवेश करेगा, परंतु यीशु ने सत्य के आधारभूत सिद्धांतों को उद्घाटित कर दिया। उन्होंने नीकुदेमुस से कहा, तुम्हें सैद्धांतिक ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आत्मिक पुनर्जनन की। तुम्हें अपनी जिज्ञासा की तुष्टि नहीं वरन एक नया हृदय प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्वर्गीय बातों का मूल्य समझने से पहले तुम्हें ऊपर से एक नया जीवन ग्रहण करना होगा। जब तक यह परिवर्तन घटित नहीं होता जो सब बातों को नया बना देता है, तब तक मेरे अधिकार या मेरे मिशन के विषय में मेरे साथ चर्चा करना तुम्हारे लिए उद्धारकारी भलाई का कोई परिणाम उत्पन्न न करेगा। नीकुदेमुस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वो प्रचार सुना था जो मन फिराव और बपतिस्मा के विषय में था, और जिसमें लोगों को उस एक की ओर संकेत किया जाता था जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसने स्वयं अनुभव किया था कि यहूदियों के बीच आत्मिकता का अभाव है और ये कि बहुत बड़ी सीमा तक वे संकीर्ण धर्मांता और सांसारिक महत्वाकांक्षा के वश में थे। उसने आशा की थी कि मसीह के आगमन पर परिस्थितियों की अवस्था इससे उत्तम होगी। तो भी बपतिस्मा देने वाले का वो हृदय परक संदेश उसमें पाप के विषय में कोई दृढ़ दोषबोध उत्पन्न न कर सका। वो एक कठोर फरीसी था और अपने सत्कर्मों पर गर्व करता था। मंदिर की सेवा के पालन पोषण में अपनी उदारता और दानशीलता के कारण वो व्यापक रूप से आदर की दृष्टि से देखा जाता था और वो अपने को परमेश्वर की कृपा के विषय में निश्चय समझता था। इस विचार से वो चकित रह गया कि एक ऐसा राज्य भी है जो इतना पवित्र है कि वो अपनी वर्तमान अवस्था में उसे देख नहीं सकता। द डिजायर ऑफ एजेस हिस्टम 13
युगों की अभिलाषा का मध्य बिंदु निकुदेमुस की पंक्ति में पाया जाता है, जो 144,000 की मुहरबंदी की पंक्ति में एडवेंटिज्म के लिए अंतिम बुलाहट का प्रतिनिधित्व करता है, वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसने मसीह के अग्रदूत का संदेश सुना, परंतु जो अपनी लौदिकिया संबंधी अवस्था से अनभिज्ञ था।
निकोदेमुस के साथ वार्तालाप में यीशु ने उद्धार की योजना और संसार के प्रति अपने मिशन को प्रकट किया। अपनी बाद की किसी भी शिक्षा में उन्होंने उतनी पूर्णता से क्रमशः उस कार्य का वर्णन नहीं किया जो उन सबके हृदयों में किया जाना आवश्यक था जो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। अपनी सेवकाई के आरंभ ही में उन्होंने महासभा के एक सदस्य, उस मन के समक्ष जो सबसे अधिक ग्रहणशील था, और लोगों के लिए नियुक्त एक शिक्षक के समक्ष सत्य को उद्घाटित किया। परंतु इसराइल के अगुओं ने उस ज्योति का स्वागत नहीं किया। निकोदेमुस ने उस सत्य को अपने हृदय में छिपा रखा और 3 वर्षों तक उसका कोई विशेष प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं दिया। द डिजायर ऑफ एजेस, सम 164।
यूहन्ना का संदेश और मसीह का उसके द्वारा बपतिस्मा परमेश्वर का भय मानने वाले प्रथम स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करते थे। यूहन्ना का संदेश विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का लौदिकिया का संदेश था, और वो संदेश मसीह के बपतिस्मे के समय सामर्थ्य युक्त किया गया, ठीक उसी प्रकार जैसे जोन्स और वैगनर का संदेश 1888 में लौदिकिया के लिए संदेश था। मसीह का बपतिस्मा और 1888 9:11 पर लौदिकिया के लिए संदेश के आगमन के प्रतिरूप थे, जिसका अंत राफिया और पानियम के मध्य बिंदु पर होता है। निकोदेमुस का अर्थ है लोगों की विजय और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। वो मुद्रांकन संदेश है जो यूहन्ना के संदेश के साथ आया। बपतिस्मे में सामर्थ्य प्रदान किया गया और मसीह के साथ निकोदेमुस की मध्यरात्रि की भेंट द्वारा परिभाषित हुआ। अध्याय 22 यूहन्ना की मृत्यु का वर्णन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके चेलों ने उस ध्वज की पहचान की जो ऊंचा उठाया जाएगा और सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बपतिस्मा दोनों ही 9 बार और 18 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2023 तक था, क्योंकि बपतिस्मा मृत्यु 2020, दफनाया जाना 3.5 दिन और पुनरुत्थान 31 दिसंबर 2023 को चित्रित करता है। फिर मध्यरात्रि की वो भेंट आती है जहां लोगों की विजय को नए जम लेने के रूप में चित्रित किया गया है। लाओदीकिया के अंधेपन से फिलाडेल्फिया वाले की 20-20 दृष्टि तक, तब मसीह के कार्य उस ध्वज को ऊंचा उठाए जाने के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इब्राहिम के लिए यूहन्ना की रेखा में मसीह के कार्य इसहाक के बलिदान के साथ मेल खाते हैं। पतरस के लिए यह रेखा समुद्र के किनारे कैसरिया कैसरिया मारितीमा 9वें घंटे पर समाप्त होती है, जहां क्रूस सब मनुष्यों को विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने की विजय के लिए बुलाता है, जो तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश इस्लाम के तीसरे हाय का संदेश है, जो 9 अक्टूबर पर इस्लाम की गधीस के साथ बिलाम की पहली भेंट में पहुंचा। फिर 7 अक्टूबर हम ऑफ हजर में 3 घेरनिस के साथ वास्तविक मनोखर देश के विरुद्ध प्रहारों का दुगुना होना, और फिर नैशविल पर दूसरा प्रहार, जबकि बिलाम इस्लाम की गधी को प्राचीन वास्तविक और आधुनिक आत्मिक मनोहर देश की दाखबाड़ियों के बीच से ले चलता है। तीसरा प्रहार शीघ्र आने वाली रविवार की व्यवस्था का भूकंप है। वही इसहाक अर्पित किया जाता है, वही यूहन्ना के चेले जो उस बड़ी भीड़ का प्रतीक है, जिन्हें शहादत के श्वेत वस्त्र दिए गए हैं, ने ध्वजा के कार्यों को सुना और देखा। उत्पत्ति, मत्ती और द डिजायर ऑफ एजेस के मध्य बिंदु 144,000 की मुहरबंदी और अन्य जातियों के बुलाए जाने की पहचान करते हैं। मसीह ने निकोदेमुस को जो व्याख्या दी वो वायु के कार्य के विषय में थी, यद्यपि उसका कार्य अदृश्य है।
निकोदेमुस अभी भी चकित था और यीशु ने अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए वायु का उदाहरण दिया। वायु जहाँ चाहती है वहाँ बहती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु ये नहीं जान सकता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। आत्मा से जन्मा हुआ हर एक जन ऐसा ही है। वृक्षों की डालियों के बीच वायु की ध्वनि सुनाई देती है, जो पत्तों और फूलों को सरसराती हुई चलती है। तो भी वो अदृश्य है और कोई मनुष्य नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। हृदय पर पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में भी यही सत्य है। उसे वायु की गति के समान ही समझाया नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति संभवतः ठीक ठीक उस समय या स्थान को ना बता सके, ना परिवर्तन की प्रक्रिया में घटित हुई समस्त परिस्थितियों का पता लगा सके, परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो अपरिवर्तित है। वायु के समान ही अदृश्य एक सामर्थ्य के द्वारा मसीह निरंतर हृदय पर कार्य करता रहता है। थोड़ा थोड़ा करके संभव है कि ग्रहण करने वाले को बिना जाने ही ऐसे प्रभाव डाले जाते हैं जो आत्मा को मसीह की ओर खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये प्रभाव उस पर मनन करने के द्वारा, पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा अथवा जीवित प्रचारक से वचन सुनने के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। अचानक जब आत्मा अधिक प्रत्यक्ष निवेदन के साथ आती है, तब वो आत्मा आनंदपूर्वक अपने आप को यीशु के प्रति समर्पित कर देती है। बहुत से लोग इसे आकस्मिक परिवर्तन कहते हैं, परंतु ये परमेश्वर के आत्मा की दीर्घकालीन अनुनय का परिणाम होता है, एक धैर्यपूर्ण दीर्घ विस्तृत प्रक्रिया। यद्यपि वायु स्वयं अदृश्य है, तो भी वह ऐसे प्रभाव उत्पन्न करती है जो देखे और अनुभव किए जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा का कार्य जो प्राण पर होता है, उस प्रत्येक कर्म में प्रकट होगा जिसने उसकी उद्धारकारी सामर्थ्य का अनुभव किया है। जब परमेश्वर का आत्मा हृदय पर अधिकार कर लेता है, तब वो जीवन को रूपांतरित कर देता है। पापपूर्ण विचार दूर कर दिए जाते हैं, दुष्कर्मों का त्याग कर दिया जाता है, क्रोध, डाह और कलह के स्थान पर प्रेम, दीनता और शांति आ जाते हैं, उदासी के स्थान पर आनंद आ जाता है और मुखमंडल स्वर्ग के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। कोई उस हाथ को नहीं देखता जो बोझ उठा लेता है, और न उस प्रकाश को देखता है जो ऊपर के दरबारों से उतरता है। आशीष तब आती है जब प्राण विश्वास के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के समर्पित कर देता है। तब वो सामर्थ्य जिसे कोई मानवीय नेत्र नहीं देख सकता, परमेश्वर के स्वरूप में एक नए प्राणी की सृष्टि करती है। द डिजायर ऑफ एजेस, दासो दत्तर, दासो तीन नना।
9 से 17 पर पिछली वर्षा की फुहार पड़नी आरंभ हुई। 9 से 17 पर इस्लाम, जो बाइबल की भविष्यवाणी में पूरब की वायु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उस समय प्रकट हुआ जब 144,000 पर मुहर लगाए जाने का कार्य आरंभ हुआ। पिछली वर्षा, जो एक ऐसा संदेश है जिसका निरूपण स्वर्णिम तेल के रूप में किया गया है, जो जकरिया की 2 स्वर्णिम नलिकाओं से नीचे उतरता है, ने लाओदिकिया के सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों को मन फिराव के लिए बुलाने का कार्य आरंभ किया। पवित्र आत्मा की वायु ने उन सब बातों को सिखाने के अपने कार्य का आरंभ किया जो लिखी हुई हैं, और अंधे लाओदिकियाइयों के हृदयों से बोलने के लिए यिर्मयाह के प्राचीन मार्गों के संदेश का उपयोग किया। पवित्र आत्मा का वो कार्य जिसका निकुदेमुस को दिया गया निरूपण और अधिक पूर्ण रूप से समझाया गया है, अर्थात वो कदम दर कदम किया जाने वाला कार्य जो उन सब के हृदयों में किया जाना आवश्यक है जो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। इस प्रक्रिया की तुलना मसीह ने वायु के कार्य से की, और ये प्रक्रिया पूरब की वायु की अवधि के दौरान घटित होती है जो 917 पर पहुंची। यशाया इसी अवधि को प्रचंड वायु के संदर्भ में संबोधित करता है।
जब वो बढ़ता है तो तू उसे परिमाण में ताड़ना देगा। पूर्वी वायु के दिन वो अपनी प्रचंड वायु को रोक लेता है। इस कारण याकूब का अधर्म शुद्ध किया जाएगा और उसके पाप को दूर करने का सारा फल यही होगा। जब वो वेदी के सब पत्थरों को पीटे हुए खड़िया पत्थरों के समान कर देगा, तब अशेरा स्तंभ और मूर्तियां खड़ी न रह सकेंगी। यशाया 27:8-9।
अंतिम दिनों में सब भविष्यवक्ता एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है, और यशाया की प्रचंड वायु वही है जो यूहन्ना की कलह की वायु है, जिन्हें 144,000 पर मुहर किए जाने के समय रोका हुआ रखा जाता है। यशाया की प्रचंड वायु वही पूर्वी वायु है जो यशाया की साक्ष्य में रुकी हुई है और यूहन्ना की साक्ष्य में भी रोकी हुई रखी जाती है। यूहन्ना की कलह की वायु तब तक रोकी जाती है जब तक परमेश्वर की प्रजा पर मुहर न कर दी जाए, और यशाया की पूर्वी वायु उस काल के रूप में पहचानी जाती है जब याकूब का अधर्म दूर किया जाता है। इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद पिश्त दूर किया गया है, उसका अर्थ है प्रायश्चित किया जाना।
यूहन्ना में की गई मुहरबंदी यही भी है जो यहेजकेल अध्याय 9 में है और यही याकूब के अधर्म को दूर किए जाने के समान है। वो स्वर्गदूत जो यरूशलेम में होकर उन लोगों पर चिन्ह लगाता है जो आहे भरते और विलाप करते हैं, वही स्वर्गदूत है जो पूरब से ऊपर आता है।
और इन बातों के बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूतों को खड़े देखा जो पृथ्वी की चारों पवनों को थामे हुए थे, ताकि ना पृथ्वी पर, न समुद्र पर और न किसी वृक्ष पर पवन बहे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को पूर्व से ऊपर आते देखा जिसके पास जीवते परमेश्वर की मुहर थी, और उसने उन चार स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न कर दें तब तक न पृथ्वी की, न समुद्र की और न वृक्षों की हानि करना। प्रकाशित वाक्य 7:1-3।
स्वर्गदूत मसीह ही है और वो पिंतेकुस्त के समय में शिष्यों को आमने सामने शिक्षा देने के 40 दिनों के अंत में ऊपर उठा, और वो लैव व्यवस्था 23 में वर्णित तुरहियों के पर्व पर उन याचकों के साथ आमने सामने शिक्षा देने के 30 दिनों के अंत में ऊपर उठता है, जिनका प्रतिनिधित्व संख्या 30 द्वारा किया गया है। 2024 मध्यावधि चुनावों का वर्ष है और ये चुनाव पहले ही भविष्यवाणी संबंधी मार्ग चिन्हों के रूप में पुष्टि किए जा चुके हैं। यदि डेमोक्रेटनों ने 2020 का चुनाव न चुराया होता तो ट्रंप रोम की पहेली को पूरा न करता। रोम की वो पहेली ये है कि वो 8वां है और 7 में से है। वो पहेली ट्रंप को पशु की मूरत के प्रतिनिधि के रूप में पहचानती है जो सदा 8वें रूप में ऊपर आता है तो भी 7 में से होता है। दानियेल 7 में छोटे सींग के ऊपर उठने के लिए मूर्ति पूजक रोम के 10 सींगों में से 3 को हटाया जाना आवश्यक था। वहां पोपी और रोम अन्य 7 सींगों के बीच 8वें के रूप में ऊपर आया तो भी वो मूर्ति पूजक रोम में से निकला क्योंकि उसे 7 में से होना था। दानियेल 8 में मादी फारसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व 2 सींगों द्वारा किया गया। फिर यूनान एक ही सींग था जो टूट जाने पर 4 सींग उत्पन्न हुए। इस प्रकार रोम के आने से पहले 7 सींग हो चुके हैं और रोम का छोटा सींग 8वां है। इस तथ्य के अन्य भी साक्षी है कि रोम सदा 8वें के रूप में ऊपर आता है और 7 में से है, परंतु इस पहेली का मुख्य संदर्भ बिंदु प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 है।
और यहाँ वो बुद्धि है जिसमें समझ है, वे 7 सिर 7 पर्वत हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा हैं, 5 गिर चुके हैं और 1 है और दूसरा अभी तक नहीं आया, और जब वो आएगा तो उसे थोड़े ही समय तक ठहरना होगा। और वो पशु जो था और नहीं है वही 8वां भी है और उन 7 में से है और विनाश में जाता है। प्रकाशित वाक्य 17:9-11।
तीनों बारा चुनावा गया चुनाव एक चुनाव को एक भविष्यवाणीगत मार्ग चिन्ह के रूप में पहचानता है। इस तथ्य का दूसरा साक्षी राष्ट्रपति कार्टर के साथ है। रीगन उन राष्ट्रपतियों में पहला था जो ट्रंप तक पहुंचने वाली उस श्रेणी का भाग है जिसमें ट्रंप वो 8वां है जो उन 7 में से है, क्योंकि वो रोम की एक प्रतिमा बनाता है। 1959 में अंत के समय से लेकर 8 राष्ट्रपतियों की पंक्ति में रीगन पहला था। 1959 दानियल 11 पद 1-4 में पूरा हुआ था और वो सबसे धनी राष्ट्रपति की गवाही को प्रस्तुत करता है। रीगन से पहले उस समय तक के इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति था। कार्टर ने इस्लाम के एक संकट को अनसुलझा छोड़ते हुए पद छोड़ा। 47 वर्ष बाद ट्रंप वर्तमान में उस समस्या का समाधान कर रहा है जिसे डेमोक्रेट कार्टर ने रीगन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि प्रथम और अल्फा रीगन एक रिपब्लिकन था जो अंत के समय के और ओमेगा के एक रिपब्लिकन का पूर्व रूप था। इसलिए ट्रंप को भी पूर्ववर्ती डेमोक्रेट राष्ट्रपति द्वारा उत्पन्न इस्लाम के एक संकट को विरासत में लेना आवश्यक था जो भविष्यवाणी की आवश्यकता के अनुसार उस समय तक के इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति होना था। ओबामा ने निस्संदेह उन सभी भविष्यवाणीगत विशेषताओं को पूरा किया और बाइडेन ने भी। रीगन के लिए अंतिम का पूर्व रूप होने हेतु उसे केवल 8वें का ही नहीं बल्कि 6ठे का भी पूर्व रूप होना था। ऐसा करते हुए यहूदा के गोत्र के सिंह को चुनावों को नियंत्रित करना था, ताकि हूद को हल्प हाट ही वरक नहीं और हूद वरक के छठों सा सभी शार सुनिश्चित की जा सके, जो दोनों ही उदाहरणों में ट्रंप से पहले आए। चुनाव एक भविष्यवाणीगत मार्ग चिन्ह है और 2026 उस राष्ट्रपति के लिए मध्यावधि चुनावों का वर्ष है जो उन सात में से आठवार है। संयुक्त राज्य अमेरिका की 250 वर्षीय रेखा 1776 में आरंभ होती है और 2026 में परिपूर्ण होती है। 45 ईसा पूर्व की 250 वर्षीय रेखा 207 ईसा पूर्व में पद 11 और 15 के बीच राफिया और पैनियम के युद्धों के मध्य परिपूर्ण हुई। राफिया भविष्यवाणी के अनुसार उत्पत्ति 17 की खतना की वाचा के साथ संरेखित है और पैनियम भविष्यवाणी के अनुसार मत्ती 16 की 144,000 की वाचा के साथ संरेखित है। 2026 207 ईसा पूर्व के साथ पद 11 और 15 के बीच राफिया और पैनियम के बीच संरेखित है, जो परमेश्वर की किसी चुनी हुई प्रजा के साथ की गई पहली वाचा और परमेश्वर की किसी चुनी हुई प्रजा के साथ की गई अंतिम वाचा के बीच भी है। 200 ईपू के मध्य बिंदु और 2026 पर समाप्त होने वाली 250 ईयर्षीय रेखाएं उस उत्पीड़न की 250 वर्षीय रेखा के साथ संरेखित होती है, जो सन 1994 में रोम नगर के जलाए जाने पर आरंभ हुई थी। वहीं से एक विचित्र मनुष्य के द्वारा आने वाले विनाश की 7 वर्षों की चेतावनी यरूशलेम के निवासियों को सुनाई गई। जब सन 70 आया और यरूशलेम नष्ट कर दिया गया, तब परमेश्वर की कलीसिया तितर बितर हो गई और उन्होंने समस्त संसार में सुसमाचार का प्रसार किया। उसी समय जब इफिसुस की कलीसिया पुनर्थान के पिंतेकुस्ती संदेश की घोषणा कर रही थी, स्मूर्ना की कलीसिया द्वारा निरूपित उत्पीड़न आरंभ हुआ, क्योंकि भविष्यवाणी की आवश्यकता के अनुसार वे दोनों कलीसियाएं कुछ समय तक समानांतर चलने वाली थीं। पौलुस इफिसुस की भविष्य सूचक कलीसिया का एक अगुआ था, तो भी उसने दोनों इतिहासों के विषय में लिखा।
अंताकिया, इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर जो जो सताव और क्लेश आए, वे तुम्हें विदित हैं। मैंने कैसे कैसे सताव सहे, तो भी प्रभु ने उन सब में से मुझे छुड़ा लिया। और जो कोई मसीही यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वो सताया जाएगा। 2 तीमुथियुस 3:11-12।
एटी जोन्स 250 वर्षीय एफडी की पहचान करते हैं, जो सन 66 में आरंभ होती है और सन 313 में मिलान की आज्ञप्ति पर समाप्त होती है। उन वर्षों के दौरान परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध उत्पीड़न मूर्ति पूजक रोम द्वारा चलाया जाता रहा, परंतु स्मूर्ना की कलीसिया के लिए संदेश में 10 दिनों का उल्लेख किया गया, जो उस अवधि के अत्यंत भीषण उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन बातों में से किसी से मत डर जिन्हें तुझे सहना पड़ेगा।
देख, शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डलवाएगा, ताकि तुम्हारी परीक्षा हो और तुम्हें 10 दिन क्लेश उठाना पड़ेगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहे, और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10।
सम्राट डायोक्लेटियन द्वारा निरूपित उत्पीड़न का वो काल 10 वर्षों का था, जो 303 में आरंभ हुआ और 313 में समाप्त हुआ, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान शासन कर रहा था, जैसा कि वो 321 के प्रथम रविवार विधि के समय भी शासन कर रहा होता, और जब उसने 303 में रोम को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया। 313 को भविष्यवाणी की दृष्टि से मिलान में हुए उस कूटनीतिक विवाह द्वारा चिह्नित किया गया, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन पश्चिम का शासक ने अपनी सौतेली बहन फ्लाविया जूलिया कॉन्स्टेंटिया का विवाह लिसिनियुस से कराया, जो उस सम्राट था जिसके नियंत्रण में रोमी साम्राज्य का पूर्वी या शीघ्र ही पूर्वी होने वाला भाग था। उस विवाह का प्रतीकात्मक अंत तब हुआ जब कॉन्स्टेंटाइन ने 303 में राज्य को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया। नीरो की 350 वर्षीय अवधि एक 7 वर्षीय अवधि से आरंभ होती है, जिसका आरंभ और अंत दोनों एक ऐसी घेराबंदी से होता है जो संसार के अंत का प्रतिरूप प्रस्तुत करती है। इस अवधि के अंत में उत्पीड़न के 10 विशिष्ट वर्ष थे। ये अवधि इफिसुस के समय में आरंभ हुई, फिर इसने स्मुर्ना के इतिहास को आच्छादित किया, जब तक कि समझौते की कॉन्स्टेंटिन की कलसिया के रूप में 313 में
पिरगमुस की कलसिया प्रकट न हुई।
377 से 347 तक के वे 17 वर्ष राफिया और पैनियम के इतिहास में अपना प्रतिरूप पाते हैं, जहां 217 ईसा पूर्व की लड़ाई और 200 ईसा पूर्व की लड़ाई 17 वर्षों के अंतर से पृथक है। राफिया की लड़ाई में टॉलेमी विजयी हुआ, परंतु पैनियम की लड़ाई से पहले ही वो मर चुका होता, तो भी उसने 221 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक 17 वर्ष राज्य किया। 250 वर्षों की तीन रेखाएं, जो तीन सत्रहों से परस्पर बंधी हुई हैं, इस विचार को अनिवार्य कर देती हैं कि 63-13 का साम्य 2026 के साथ बैठता है।
313 उत्पीड़न से समझौते की ओर एक स्पष्ट संक्रमणता। इस प्रकार 313 उस भविष्यवाणी संबंधी प्रकृति के परिवर्तन का प्रतीक चिन्ह बनता है, जिसका प्रतिरूप स्मोर्ना से पर्गमस में हुआ परिवर्तन द्वारा प्रकट किया गया था। पहला कदम एक कूटनीतिक विवाह द्वारा निरूपित हुआ, जिसका अंत 17 वर्ष बाद तलाक में हुआ। दूसरा कदम पहला रविवार का कानून था। प्रेरणा हमें सूचित करती है कि रविवार का कानून एक क्रमिक कदम दर कदम प्रक्रिया से पहले आता है, जिसमें ऐसे रविवार के कानून सम्मिलित होते हैं जो उस रविवार के कानून से पूर्ववर्ती होते हैं, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वो तुम्हें रविवार मानने के लिए बाध्य करता है, और साथ ही परमेश्वर के सातवें दिन के सप्त को मानने के कारण तुम्हारा उत्पीड़न भी करता है।
यदि पाठक उन शक्तियों को समझना चाहे जिन्हें शीघ्र आने वाले संघर्ष में प्रयुक्त किया जाएगा, तो उसे केवल उन साधनों के अभिलेख का अनुसरण करना है जिन्हें रोम ने अतीत युगों में उसी उद्देश्य के लिए अपनाया था। यदि वो जानना चाहे कि पोपवादी और प्रोटेस्टेंट संयुक्त होकर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो उनके मत सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं, तो वो उस भावना को देखे जिसे रोम ने सप्त और उसके समर्थकों के प्रति प्रकट किया था। राजकीय फरमान, सार्वभौमिक परिषदें और लौकिक सत्ता द्वारा समर्थित कलीसियाई विधियां विसीढ़ियां थीं, जिनके द्वारा उस मूर्ति पूजक पर्व ने मसीही जगत में अपना सम्मानित स्थान प्राप्त किया। रविवार पालन को लागू करने वाला पहला सार्वजनिक उपाय वो विधि थी जिसे कॉन्स्टेंटाइन ने अधिनियमित किया AD 300 BC। इस फरमान ने नगरवासियों को सूर्य के वेनरेबल डे पर विश्राम करने की अपेक्षा की, परंतु ग्रामवासियों को अपनी कृषि संबंधी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी। यद्यपि वास्तविकता में ये एक अन्य जातीय कानून था, तथापि मसीही धर्म की उसकी नाममात्र स्वीकृति के पश्चात सम्राट द्वारा इसे लागू किया गया। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 573-574।
ईस्वी 33 का मिलान का फरमान वो राजकीय आज्ञा था जिसके पश्चात सामान्य परिषदें और लौकिक शक्ति द्वारा समर्थित कलीसियाई विधियां वे चरण थे। ये क्रमिक चरण थे जो 321 में प्रथम रविवार विधि तक ले गए। उन चरणों में से एक कलीसियाई विधियां हैं, जैसे रविवार पालन, जो लौकिक शक्ति द्वारा समर्थित हों। 1888 का काल उस रविवार विधियों की एक श्रृंखला की पहचान कराता है, जिन्हें सीनेटर ब्लेयर द्वारा सीनेट में प्रस्तुत किया गया था, पर वे कहीं नहीं पहुंची। तथापि उसी इतिहास के दौरान अनेक राज्य राज्य प्रवर्तित रविवार विधियां पारित कर रहे थे। ये दो गवाह 300 तरीनों को एक ऐसे मार्ग चिन्ह के रूप में पहचानते हैं जहां राजकीय आज्ञाएं, जैसे कोई कार्यकारी आदेश, पृथ्वी के पशु के इतिहास में एक संक्रमण को चिन्हित करें जो अजगर के समान बोलने के लिए नियत है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर के समान बोलता है, तो वो बाइबेलीय भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में समाप्त होता है, और वो ऐसा उसी प्रकार बोल कर करता है जैसा उसने छठे राज्य के रूप में अपने शासन के आरंभ में बोला था। 1798 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स पारित किए, जो रविवार के विधि का प्रतिरूप थे। 1798 के एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स उन तीन चरणों में तीसरे थे जो 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से आरंभ हुए और जिनके पश्चात 1798 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। वे तीन चरण 3 से 13, 3-7-7 संगत है।
1776, 1789 और 1798 सभी ऐसी कार्यवाहियां थीं जिन्हें बोलना परिभाषित किया गया, क्योंकि प्रेरणाबाद हमें सूचित करती है कि राष्ट्र का बोलना उसकी विधायी और न्यायिक प्राधिकारियों की कार्यवाहियां 313, 321 और 336 सभी महाकॉन्स्टेंटाइन से संबंधित मार्ग चिन्ह।
प्राचीन वैस्तविक इसरो का अंत उत्तर और दक्षिण दोनों राज्यों का एक थलैक्ट रूप में प्रतीकित किया गया है और 330 इसी का प्रतिनिधित्व करते पूर्व और पश्चिम के बीच एक विवाह विच्छेद ऐसे विवाह में जो उससे 70 वर्ष पहले मिलान की आग्नपति के विवाह से आरंभ हुआ था। रविवार व्यवस्था के समय संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी परिविदिशाकालीन अवधि का पात्र भर चुका होगा और अपने भविष्य सूचक उद्देश्य के संदर्भ में वो परमेश्वर से तलाकशुदा कर दिया जाएगा, जैसा कि प्राचीन इसराइल के लिए दूध और मधु से बहने वाले देश द्वारा प्रतिरूपित किया गया था। प्रेरणा कहती है कि राष्ट्रीय धर्म त्याग के पश्चात राष्ट्रीय विनाश आता है। ये तब घटित होता है जब परमेश्वर उस महिमा में देश को तलाक दे देता है, जैसा कि वर्ष 330 द्वारा निरूपित है। 313 के विवाह से लेकर 381 में बढ़ती हुई रविवार व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला में पहली व्यवस्था तक और 330 के तलाक तक 1776-313 के साथ संरेखित है और 1789-381 के साथ संरेखित है तथा 1789-330 के साथ संरेखित है। 373-331 ईसा पूर्व में एक्टियम के युद्ध के बाद से 360 वर्षों की भी पूर्ति है। एक्टियम रोम की तीसरी बाधा थी और इस प्रकार वो संडे लॉ का प्रकार चिन्ह है, जहां आधुनिक रोम अपनी दूसरी और तीसरी बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। 333 के वेमार्क पर पनियम का युद्ध एक्टियम के युद्ध से जुड़ जाता है। जोरात असरा ईसा पूर्व में राफिया का युद्ध का 2014 के यूक्रेनियन वॉर के साथ संरेखित होता है। फिर 2015 में ट्रंप ने अपना पहला प्रेसिडेंशियल कैंपेन प्रारंभ किया। 2020 में अर्थ बीस्ट के दोनों सींग मार डाले गए। 2023 में वे दोनों पुनर्जीवित किए गए। 2024 में फाउंडेशंस की परीक्षा आरंभ हुई और 2025 में 8वें प्रेसिडेंट तथा उसके पेपल काउंटरपार्ट की भविष्य सूचक संधि उनकी पारस्परिक इनॉग्रेशंस द्वारा चिह्नित की गई। हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।